भजन संहिता 102, भजन 102 को दाऊद प्रार्थना करते हुए आरंभ करता है और परमेश्वर से याचना करता है कि वो उसकी प्रार्थना सुने। भजन 102 पद 1 और 2, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। हम परमेश्वर के साथ कैसा हटी व्यवहार रखते हैं तो भी ये कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे साथ धीरज धरता है। तो भी जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं परमेश्वर से तुरंत उत्तर चाहता हूं, मैं दाऊद से मेल खाता हूं, मैं अपने शत्रुओं का न्याय चाहता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तब उत्तर चाहता हूं, प्रभु मैं प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करना नहीं चाहता। जब मैं उंगली उठाऊं तब तुरंत मेरा काम हो जाए, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इसी समय भी कार्य करे। मैं नहीं चाहता कि मुझे प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, ये स्वाभाविक है। अब इसी स्वभाव को परमेश्वर से जोड़कर देखिए, जब परमेश्वर मुझसे कुछ इच्छा रखता है या कराना चाहता है तब तो मैं चाहता हूं कि वो प्रतीक्षा करे और मुझे काम करने का मौका दे। जब मुझे मौका मिलेगा तभी मैं वो काम करूंगा, अर्थात परमेश्वर धीरजवंत होता जाए, पर मैं अपनी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर चाहता हूं। भजन 102 पद 3 और 4, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है, मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। ये तो बड़ी बुरी बात है कि आप पर ऐसी विपत्ति आए कि आपने खाना खाना छोड़ दिया। भजन 102 पद 5 से लेकर 11 तक, कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूं, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूं, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूं और गौरे के समान हो गया हूं जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरुद्ध की धुन में बावले हो रहे हैं वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। इस बात को वो धूप घड़ी के आधार पर कह रहा है जिसके द्वारा वे उन दिनों में समय देखा करते थे। धूप घड़ी पर छाया घटने का अर्थ था कि दिन समाप्त होने को है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। भजन 102 पद 11 में आगे लिखा है, और मैं आप घास की नाई सूख चला हूं। इसके विपरीत भजन 102 पद 12, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वही पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरे नामो निशान मिटने को है, मैं घास की नाई सूख चला हूं, परंतु परमेश्वर तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। भजन 102 पद 13, तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। भजनकार अब आने वाले भविष्य को देखता है जब परमेश्वर इसराइल में कार्य करेगा। इसराइल में आने से पहले जब वे जंगल में थे, मूसा ने उन्हें परमेश्वर की वाचा दी जिसके द्वारा वे प्रतिज्ञा के देश को विरासत में ले सकते हैं। परमेश्वर की वाचा की आशीष तुम्हारे साथ रहेगी यदि तुम परमेश्वर के साथ चलोगे और यदि परमेश्वर की सेवा करोगे। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी फसल को, संतान को, परिवार को आशीष दूंगा। वो सारी आशीषों की प्रतिज्ञा करता है, परंतु शर्त यह है कि वे उसके साथ चले। परंतु यदि तुम फिर जाओ, परमेश्वर कहता है, यदि तुम दूसरे देवताओं के पीछे चलो और दंडवत करो, आराधना करो और अपने बच्चों की बलि चढ़ाओ, तो मैं तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा और देश में महामारी फैलाऊंगा। मैं तेरे शत्रुओं को देश में लाऊंगा। अंत में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बंदुआई में डालूंगा और तुम सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाओगे। तुम पृथ्वी के देशों में श्राप और उपहास ठहरोगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में आने से पहले उनसे ये प्रतिज्ञा की थी, यदि वे परमेश्वर से फिरेंगे तो वे संसार के सब देशों में तितर बितर हो जाएंगे। हमें केवल उनके इतिहास को देखना है कि परमेश्वर के वचन में कितनी सच्चाई है। जब तक वे परमेश्वर के साथ बने रहे, प्रभु ने उन्हें समृद्ध रखा। जब वे परमेश्वर से विमुख हो गए, तब वे श्राप जो परमेश्वर ने ठहराए थे उन पर आ पड़े। उनका देश सूखे और अकाल से भर गया और शत्रुओं ने आकर उन्हें बंदवाई में ले लिया और वे लोग पूरे संसार में तितर बितर हो गए। परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी देश में आने से पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो उन्हें एक दिन फिर से एकत्र करेगा। सारी पृथ्वी के कोने से जहां वे आज प्रदेशी है, वो उन्हें वापस लाएगा और फिर से उसी देश में स्थापित करेगा। यही वो कड़ी है जो पुराने नियम से चली आ रही है। परमेश्वर इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य रहा है कि प्रतिज्ञा का देश उसके और उसके वंश का होगा, और इस बात को कलीसिया के सदृश्य मानकर ये कहना गलत है, परमेश्वर ने इसराइल को सदा के लिए छोड़ दिया और कलीसिया ही अब इसराइल है, इसलिए आत्मिक रीति पर वे प्रतिज्ञाएं कलीसिया पर लागू होती है। ये सच है कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम सब इब्राहिम की संतान हैं, परमेश्वर की उस वाचा के भागी हैं जो इब्राहिम से की गई थी। परंतु परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के साथ फिर व्यवहार करेगा, ये सत्य है। परमेश्वर ने दानियल से कहा, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इन 70 सप्ताहों में से 69 सप्ताह उस समय पूरे हो जाएंगे जिस समय के मध्य यरूशलेम के पुनर्स्थापन और फिर से बनाने की आज्ञा निकाली जाएगी और मसीहा आएगा। परंतु उसने ये भी कहा था, मसीहा काटा जाएगा, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर परमेश्वर कहता है, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी और प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो वाचा को तोड़ेगा। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए 69 सप्ताह उस समय पूरे हो गए थे जब शेयर्ष राजा ने यरूशलेम की पुनर्स्थापन की आज्ञा निकाली और बाबुल के कैलेंडर के अनुसार 483 वर्ष बाद यीशु आया। अभी अंतिम 7 वर्ष का समय पूरा होना शेष है जो भविष्य में होगा। यीशु उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के संदर्भ में जो दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कहता है कि वो भविष्य में उसके दूसरे आगमन से पहले आएगा। यीशु उजाड़ने वाली वस्तु के विषय में कहता है, जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा जैसे दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पड़े वो समझे, तब जंगल में भाग जाना। इसलिए 70वां सप्ताह भविष्य में आने वाला समय है। ये कार्य उन 7 वर्षों के मध्य में यूरोप के अगुओं में से एक के द्वारा किया जाएगा, जो यरूशलेम में मंदिर को पुनर्स्थापित करेगा। 3.5 वर्ष बाद वो परम पवित्र स्थान में खड़ा होगा और आज्ञा देगा कि उसकी आराधना की जाए, क्योंकि वही परमेश्वर है। नियुक्त समय में परमेश्वर इसराइल राष्ट्र पर अपनी आत्मा उंडेलेगा, और जैसा कहा गया है, अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। इससे प्रतीत होता है कि उस समय के संदर्भ में है, जो मैं समझता हूं कि बहुत निकट भविष्य में होने वाला है। शत्रु राष्ट्र इसराइल पर आक्रमण करेगा और परमेश्वर की शक्ति से नष्ट किया जाएगा। एहेस्केल के 38वें अध्याय में प्रभु इसका उल्लेख करता है। 23 में परमेश्वर कहता है, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। इसलिए यदि इसे 15वें पद के साथ जोड़कर देखिए, अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। अब ये उस समय की तरफ संकेत करता है, जो समय इसराइल के ऊपर कृपा दिखाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। यदि आप एहेस्केल अध्याय 39 पद 27 में देखें, तो वहां लिखा है, जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। इसे एहेस्केल अध्याय 38 पद 23 से जोड़े, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ये जातियां उन्हें विधर्मियों के बीच बंधुआई में ले गई थी, परंतु मैंने उन्हें उनके देश में इकट्ठा किया है, किसी को भी वहां रहने नहीं दिया, और ना ही मैं अपना मुख फिर उनसे छिपाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी आत्मा को इसराइल के घराने पर उंडेला है, यहोवा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, या प्रभु परमेश्वर कहता है, वहां यहोवा परमेश्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन वो अन्य जातियों की आंखों के सामने अपने आप को पवित्र ठहराएगा, उस दिन वो सब की आंखें खोल देगा, मैं सदा छिपा ना रहूंगा। पौलुस कहता है, ये अंधापन इसराइलियों को इसलिए मिला कि अन्य जातियों का समय पूरा हो जाए। इसराइल में अंधापन इसलिए है कि अन्य जातियों की छाप पूरी न हुई, परंतु ये देश का अंधापन जो परमेश्वर ने उन पर डाला है हटाया जाएगा। वो अपनी आत्मा उन पर उंडेलेगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर तब तक अपनी कलीसिया को पृथ्वी से हटा लेगा। हम इसराइल देश के लिए परमेश्वर के निश्चित समय की बात कर रहे हैं, अर्थात वो समय जब परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि करेगा। भजन 102 पद 14, भजनकार कहता है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूली पर तरस खाते हैं। एक इसराइली मार्गदर्शक जो गर्मियों के अवकाश में मेरे घर पर आने की योजना बना रहा था, उससे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, प्रिय भाई चक, मैं इस विश्वास के साथ पत्र लिख रहा हूं कि वहां सब कुछ ठीक होगा। मैं ये बताने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि इन गर्मियों की छुट्टी में हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पवित्र सुंदर शहर में संपत्ति खरीदने की आशीष दी है, वही शहर जिस पर परमेश्वर ने आंखें लगाई है, जिसे प्रभु ने आशीष दी है, और हम प्रभु के इस सुंदर शहर में घर बनाने जा रहे हैं। भजनकार यरूशलेम के पत्थरों और धूलि के बारे में लिखता है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूलि पर तरस खाते हैं। भजन 102 पद 15 और 16। इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इसराइल के साथ 7 वर्षीय कार्य करने जा रहा है। 7 वर्ष के समय में परमेश्वर इस मुख्य कार्य को पृथ्वी पर करेगा। वचन के अनुसार इस समय को याकूब के कष्ट का समय या याकूब की पीड़ा का समय से जानते हैं। ये धर्म की गड़बड़ का समय होगा, क्योंकि आरंभ में ख्रिस्त विरोधी वाचा बांधेगा और इसराइल के बहुत से नेता उसको मसीह घोषित करेंगे और मसीहा की तरह उसकी सराहना होगी। परमेश्वर के कुछ गवाह होंगे जो उन्हें सच्चाई बताएंगे और उससे दूर रहने की चेतावनी देंगे। ऐसे लोग भी होंगे जिन पर परमेश्वर ने छाप की होगी और वे भी ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध गवाही देंगे। परंतु धार्मिक नेता जिन्होंने हमारे मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और अब भी लोगों को अंधा बनाते हैं, कपट करेंगे और उस मनुष्य की मसीह की तरह प्रशंसा करेंगे और उसका जय घोष करेंगे। परंतु 3.5 वर्ष के बाद जब मंदिर का नव निर्माण हो जाएगा और आराधना आरंभ हो जाएगी, तब ख्रिस्त विरोधी मंदिर में आकर परम पवित्र स्थान में खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर होने का दावा करेगा, परमेश्वर की तरह अपनी आराधना की मांग करेगा। उस समय लोगों को अपनी गलती का बोध होगा, वे जंगल में उस जगह को भाग जाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है। अंतिम 1290 दिनों का समय महाक्लेश का समय होगा, जिसमें परमेश्वर का प्रकोप बरसेगा। ये समय बहुत खून बहने का समय होगा और ऐसा भयानक समय होगा जैसा अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है। लोग कहते हैं भले दिन आने वाले हैं, हमें एक नया प्रशासन मिलेगा। विश्वास मत करना, सबसे भयानक दिन आने वाला है। बुरे दिनों के विषय में वचन कहता है, बुरे से बुरा समय आने वाला है। मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि प्रशासन में बदलाव हमारे समाज की सारी भावनाओं को बदल देगा। मैं आत्मिक क्षेत्र में इस विचार पर विश्वास नहीं कर सकता। इसराइल देश की तरह ऐसे कई क्षण आएंगे जो विभिन्न राष्ट्रों को पुनर्जीवित करेंगे और परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे। हम पतन की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कोई बात भी हमारे पतन को रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जहां तक संसार के इतिहास का संबंध है, हम रेखा के अंत तक पहुंच गए हैं। परंतु क्लेश के तुरंत बाद वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर महिमा और ऐश्वर्य के साथ आते देखेंगे। जैसा हम पढ़ते हैं, जब प्रभु सियोन को फिर से स्थापित करेगा, वो अपनी महिमा में आएगा। पहली बार जब वो आया, तब उसने अपमान सहन किया था, ताकि मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा ले और क्रूस पर घृणित मृत्यु सही, परंतु वो शक्ति और महिमा में फिर आएगा और पृथ्वी पर धार्मिकता और शांति से सदा के लिए राज्य करेगा। इसलिए परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है और तब परमेश्वर सियोन को स्थापित करेगा। हम जानते हैं कि समय आ रहा है जब वो अपनी महिमा में प्रकट होगा। इसराइल देश की पुनर्स्थापना होगी। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपने लोगों को सारी पृथ्वी से इकट्ठा किया और अपने देश में ले आया और उनकी अपनी सरकार है। यरूशलेम उनके हाथ में है और अब वे अंतिम कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय हम किसी राष्ट्र के द्वारा मध्य पूर्व और इसराइल पर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक ऐसी घटना होगी जो अंत को शीघ्रता प्रदान करेगी। इससे कलीसिया अलग रहेगी। भजन संहिता 102 पद 17 और 18। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। दूसरे शब्दों में भजनकार कहता है, मैं ये आपके लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए लिख रहा हूं। हमारी पीढ़ी, वो पीढ़ी जो सियोन को बनते हुए देखेगी, जैसे दानियल ने अंतिम 7 वर्ष के समय के लिए लिखा था कि परमेश्वर इन 7 वर्षों में काम करेगा और अधार्मिक अंधेपन को दूर करेगा। दाऊद इसके लिए कहता है, कितनी देर हे प्रभु, क्या सब बातें खत्म होने तक? प्रभु ने दानियल से कहा, इन सब बातों को पुस्तक में लिखकर मोहर कर दे, अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, दानियल तू नहीं समझता। दानियल समझ के लिए पुकार रहा था, परंतु परमेश्वर ने कहा, दानियल तू नहीं समझेगा, बस इस पुस्तक को मोहर बंद कर दे, परंतु अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। परमेश्वर ज्ञान देगा, और आज हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोल दी है और ये आज कितना स्पष्ट है, जैसे हमारे पास इतिहास की जानकारी है। अब वे बातें जो दानियल लिख रहा था और स्वयं भी नहीं समझता था, हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए ये बातें आने वाली पीढ़ी के लिए है, ये हमारे लाभ के लिए है। हम ही वो पीढ़ी है। भजन संहिता 102 पद 18 में आगे लिखा है, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही या की स्तुति करेगी। अतः हमें ये सब जानकारी हो चुकी है और हमें प्रभु की बड़ाई करते हुए परमेश्वर के वचन को मानना है। भजन 102 पद 19 से लेकर 26 तक। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंधुओं का कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। ये उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तो उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वो तो बदल जाएगा। ये रोचक बात है कि वो पृथ्वी और स्वर्ग के बारे में ऐसा कहता है। परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग की नेव अपने हाथों से डाली, परंतु वे नष्ट हो जाएंगे। यीशु ने कहा, मत्ती 24 अध्याय 35 पद, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। पत्रस व्याख्या करता है कि वो कैसे नष्ट होंगे, क्योंकि सारे तत्व तेज गर्मी से पिघल जाएंगे और नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होगी। नया आकाश और नई पृथ्वी जहां धार्मिकता वास करेंगी। भजनकार वास्तव में विज्ञान के उन नियमों को जानता था जो गर्मी और अन्य ऊर्जाओं के संबंध के बारे में थे, जिन्हें दूसरे नहीं जानते समझते थे। भजनकार जानता था कि पृथ्वी पुरानी होती जा रही है, वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। जैसे श्रीमान हर्षेल जीन कहते हैं, विश्व एक बड़ी घड़ी के समान है जिसमें चाबी भर दी गई है और वो आहिस्ता चल रही है। आहिस्ता चलना, कपड़े के समान पुराना होना, कोट या वस्त्र के समान जिसे आप बदल देंगे। परमेश्वर पृथ्वी को बदल देगा और स्वर्ग को भी, और वे नए हो जाएंगे। भजन 102 पद 27 और 28। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। पृथ्वी पुरानी होती जा रही है, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड पुराना हो रहा है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। चाहे संपूर्ण जगत ब्रह्मांड पुराने कपड़े की तरह बदल जाएगा, प्रभु वही रहेगा। हमें इब्रानी भाषा में कहा हुआ ये कथन याद रखना चाहिए, यीशु मसीह आज कल और सदा के लिए एक सा है। परमेश्वर कहता है, देखो मैं प्रभु परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं और इस बात का कोई शक नहीं है।